ओम शांति। एक कमरे में दो लोग सो रहे थे। जो पहला व्यक्ति था वो एक स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में वो देख रहा था कि उसका जो घर है इतने लंबे समय से परिश्रम करके जो उसने बनाया है, जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी सारी संपदा है, वो सारी जल रही है। और वो अपना जलता हुआ वो घर देखकर, जो कि स्वप्न में जल रहा है, वो रो रहा है। और रो वो दिखाई दे रहा है कि वो रो रहा है, पर घर कहाँ जल रहा है? स्वप्न में। उसके बाजू में एक दूसरा भी व्यक्ति है, वो भी एक स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में वो देख रहा है कि उसकी शादी हो गई है धूमधाम से, और फिर वो एक बहुत विशाल भवन में गए हैं, और ये जो घर है ये बहुत सुंदर है, और उस घर के सौंदर्य को और वहां की सारी संपदा को देख देख कर वो व्यक्ति बहुत बहुत खुश हो रहा है और नींद में ही हंस रहा है, और बाहर से वो दिखाई दे रहा है। तो दो व्यक्ति, दोनों भी सो रहे हैं, परंतु पहला नींद में रो रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि स्वप्न में देख रहा है उसका घर जल रहा है। दूसरा जो है वो खुश हो रहा है क्योंकि बहुत विशाल सा भवन उसे दिखाई दे रहा है, जिसमें अथाह संपत्ति है, संपदा है। उसी कमरे में एक तीसरा भी व्यक्ति है जो सो नहीं रहा है, जो जागा हुआ है, और वो बैठा हुआ है, और वो इन दोनों को देख रहा है। वो पहले को भी देख रहा है जो कि रो रहा है, वो दूसरे को भी देख रहा है जो कि खुश हो रहा है, परंतु ये खुद ना तो रो रहा है, ना तो दुखी है, और ना ही सुखी है। वो जाग रहा है। पहला जो है उसके सामने वो दुख है जो है नहीं परंतु है। पहला जो है वो घर को देख रहा है जो वास्तव में है नहीं परंतु है, और फिर उसी घर को वो मिटते हुए दिख रहा है जो कि मिट नहीं रहा है परंतु मिट रहा है, परंतु वो है ही नहीं, परंतु परिणाम दुख है। परिणाम दुख, क्योंकि उसके सामने धू धू कर जल रहा है, मिट रहा है वह घर जो वो अपना मानता है, परंतु है वो स्वप्न। दूसरा, उसने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की घर बनाने को, फिर भी घर है और जिसको वो अपना मानता है, और वास्तव में वो घर है नहीं परंतु उसके लिए है, परंतु उस घर के न होने से परंतु उसके लिए होने से वो सुखी है, परंतु वास्तव में वो सुख भी झूठा है, क्योंकि वो सुख है नहीं, क्योंकि सुख का आधार घर है और घर है नहीं, क्योंकि घर स्वप्न में है। जो व्यक्ति जागा हुआ है केवल वो ये देख पा रहा है दोनों को। पहला अपने दुख को नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो सो रहा है। पहला दूसरा सुख को अनुभव हो रहा है परंतु वो भी सोया हुआ है। केवल तीसरा ही वास्तव में जो देख रहा है वो सत्य है। जो तीसरा है, जो जागा हुआ है, वही समझ पा रहा है, उनको तो ये भी नहीं पता ये नींद है, उन दोनों को, सुखी और दुखी दोनों को पता नहीं है नींद है, वो केवल उसी को पता है जो जाग रहा है, वो ही बता सकता है कि ये दोनों ही मिथ्या है। वो तो केवल दृश्य मात्र है, समय के घोड़े पर चलते हुए दृश्य है वो, सुख और दुख जो आ रहे हैं, पर पता उसको है जो जाग रहा है। तो ज्ञान अर्थात जागरण, ज्ञान अर्थात सुख नहीं या दुख नहीं, ज्ञान अर्थात जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ लेना, ज्ञान अर्थात चेतना की वह दशा जिसमें वो जागृत रहती है। दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं वो ये भी देख लेती है कि ये दृश्य जो दिख रहा है ये नींद की अवस्था में दिख रहा है, इसलिए दुख। वो ये भी देख लेती है कि ये जो सुख है ये भी वास्तव में नींद का ही सुख है, इसलिए वो भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, सत्य केवल जागरण है। तो सच्चा ज्ञान जो है वो क्या है? संपूर्ण जागरण। आत्मा देख ले कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं सारी नींद है, और सत्य कुछ और ही है जो मुझे पता ही नहीं है। तो आज की जो मुरली है वो सारी किस पर है? नया ज्ञान। बाबा ने कहा इस ज्ञान को सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करेंगे? बाबा ने कहा इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा ने कहा इस ज्ञान का आवाज बुलंद करो। कैसे आवाज बुलंद करेंगे? ढेर सारे प्रश्न हैं। ये ज्ञान, इसमें तीन प्रश्न हैं। पहला तो ये नया ज्ञान है। पहले तो ब्राह्मणी इसे नया समझे, बाद में दूसरों को ये समझाया जाए कि ये नया है, पर क्या हमने इसे नया समझा है? सूचनाओं को एकत्र कर लेना ज्ञान तो नहीं है। हमारे लिए ही वो नया हो, फर्स्ट स्टेप तो ये है, उसके बाद में हम दूसरों को समझा सकेंगे ये नया है। बाबा ने कहा सिद्ध करो, प्रत्यक्ष करो ये नया है। यदि हमारे लिए ही वो पुराना है तो नयों को नया है ऐसे कैसे बताएंगे? ये सबसे पहला। दूसरा प्रश्न है कि नया है तो कौन सी नई बातें है इसमें, इस ज्ञान में कौन सी नई बातें है जो 7 डेज कोर्स की किताब है उसको छोड़कर, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र गोला सीढ़ी त्योहार ये सब छोड़कर। तीसरा प्रश्न है कि इसको सिद्ध कैसे करें? तो ये सारे प्रश्न है। तो मुरली की शुरुआत करेंगे। क्या कहा बाबा ने शुरुआत में? शिवानंद भाई शुरुआत कहां से है मुरली आज की? बाबा किसको देख रहे हैं? बेहद शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। कहां कहां हुआ है? एक तो बेहद का ताज, बेहद का तख्त, बेहद का की स्मृति स्वरूप, बेहद के ताजधारी, पर उसने भी कौन सी? बेहद की जिम्मेवारी। ऐसे बच्चे अपनी लाइट माइट चारों तरफ बेहद में फैला रहे हैं, देह की हदों से भी पार, ये भी कहा है। तो एक योग का प्रयोग जो रोज करना है वो है कि सूक्ष्म वतन में बाबा मुझे वो क्राउन पहना रहे। कौन सा संजय भाई? कौन सा बेहद का? जिम्मेवारी का ताज, बेहद की जिम्मेवारी, बेहद के स्मृति स्वरूप का ताज। तख्त के बारे में बाबा ने आज कुछ बोला नहीं, परंतु तख्त पर भी बिठा रहे और ताज पहना रहे, अर्थात ताज आ गया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ा काम करना है, अपनी खुद की कमजोरियां, दुख हद, उसमें अगर फंसे रहेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे कर सकेंगे पूरी। इसलिए ये एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि हम वतन में गए, एक ताज रखा हुआ है, बाबा ने ताज उठाया और मेरे सिर पर रखा। कौन सा ताज है ये? स्मृति का और जिम्मेवारी का। स्मृति अर्थात जागरण, अवेयरनेस। एक तो ये बात कही, उसके बाद में क्या कहा? उसके बाद में बेहद में ले जाने की सेवा करनी है। जैसे किसने की? जैसे बाप ने की, हद से बेहद में ले जाने की सेवा। मेरा एक एक बच्चा क्या बन जाए? बाप समान, संपूर्ण, संपन्न, समान, विशेष और बहुत सारे टाइटल्स बोले हैं। क्या क्या? सिक्की लदे, मुरब्बी, श्रेष्ठ, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइटल्स आए हैं। तख्त नशीन। एक तो वो अभ्यास, ताज रखा है। दूसरा, आत्माओं को बेहद में ले जाने का अभ्यास, सारी आत्माओं को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराने का अभ्यास, सारी आत्माओं को देह से परे जो अनुभव है वो कराने का अभ्यास करना है। उसके बाद में रूह रिहान। पांच क्या बताई? अथॉरिटीज कौन कौन सी? ज्ञान, योग बल, श्रेष्ठ धारणा, चौथी वर्षेपन, आपके वर्षेपन की धारणा, वर्षेपन की अथॉरिटी, और लास्ट विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने की अथॉरिटी। ऐसे वारिसपन, ऐसी पांच अथॉरिटीज। इसमें से मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? ज्ञान की। अब हम फिर से अपने प्रश्न की ओर आते हैं कि बाबा ने कहा है कि ज्ञान की अथॉरिटी को सिद्ध करो, प्रत्यक्ष करो, आवाज बुलंद करो, ढिंढोरा पीटो। वो आप नहीं पीटोगे, जो दूसरी आत्माएं हैं वो सेटिस्फाई हो जाएगी और पीटेगी। अब सबसे पहला तो ये प्रश्न जो पूछा था, ये जो ज्ञान है इसमें नवीनता क्या है, या फिर कैसे नवीनता लाए? नवीनता दुनिया वालों को सुनाने के लिए हाँ और ना, उनके हाँ और हमारे ना, उनके हाँ, ना और हमारे हाँ, वो नहीं। इस ज्ञान में क्या नवीनता है? वो हाँ, सेवन डेज कोर्स नहीं चाहिए। हाँ, तो ये यदि हमारे सामने कोई दूसरा संसार का व्यक्ति आए तो हम उसको ये ज्ञान सुनाए, क्या बोलकर समझाए कि ये ज्ञान से आपके जीवन में क्या होगा, यही चाहिए प्रैक्टिकल। एक तो उसकी जो समस्या है वो दूर करने वाला है ज्ञान, और उसका जो कंफ्यूजन है वो ठीक करने वाला है, और उसका जो स्ट्रेस टेंशन है वो ठीक करने वाला है, और कौन सा? उसको क्या फायदा होगा? एक गृहस्थी आया है सामने, हमको ये ज्ञान स्पष्ट करना है, ये ज्ञान सिद्ध करना है। वो सिद्ध तब होगा कि जब वो फायदे देखेंगे, इससे फायदे दिखने चाहिए उसको, तो ही ज्ञान से ज्ञानदाता स्पष्ट होगा या सिद्ध होगा, प्रत्यक्ष होगा। क्या फायदे दिखने चाहिए उसको? शारीरिक बीमारी से छुड़ा ना, ज्ञान से। यहाँ तो बोलेंगे तुम लोगों में से कितने बीमार है, शारीरिक से तो सब बीमार है। हाँ, निर्व्यसनी। ये ज्ञान ऐसा है कि इससे निर्व्यसनी बनने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, जिन्होंने धक से छोड़ दिया। एक तो ये सुखी हो सकते, क्योंकि दुखी है तो सुखी होंगे, अशांत है तो शांत होंगे, टेंशन में होंगे तो टेंशन से बाहर आएंगे, डिप्रेशन में होंगे तो डिप्रेशन से बाहर आएंगे, और संबंध में मधुरता आएगी, अभी जो कड़वाहट है रिलेशनशिप्स रिपेयर हो जाएगा, और इच्छा में फायदा क्या होगा, ईमानदारी आएगी, ऑनेस्टी आएगी, करेज आएगा, डिसिप्लिन आएगी, सिंसेरिटी आएगी, जितने गुण हैं वो गुण आ जाएंगे। हाँ, सारे पाबंदी से लेके सब कुछ, तो सारे जीवन में गुण आ जाएंगे, और क्या होगा, व्यवहार कुशलता आ जाएगी, कर्म कौशल्य आ जाएगा, वर्क इफिशियंसी, वो उसकी ट्रेनिंग आ जाएगी, वर्क इफिशियंसी। जैसे आज की मुरली में कहा है, निर्णय शक्ति परक शक्ति का आधार क्या है, एकाग्रता, और एकाग्रता का आधार क्या है, मनन शक्ति। मनन किसका, ज्ञान का, मतलब ज्ञान से फिर ज्ञानदाता स्पष्ट होगा, ज्ञानदाता के लिए हुआ ज्ञान, ज्ञान का मनन, मनन से एकाग्रता, एकाग्रता से निर्णय और परखने की शक्ति, और जहां निर्णय और परखने की शक्ति आ गई वहां फिर गलतियां नहीं होगी, वहां फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो संसार के सारे लोग दुखों में डूबे हुए है, पश्चाताप में डूबे हुए है, करना क्या है उनको पता नहीं है। और ये ज्ञान से क्या होगा, चरित्र की महंगाई और चरित्र की गरीबी संसार में है, और परिस्थितियों को सामना करने का साहस, धीरज, धैर्य, करेज, हिम्मत सब आ जाएगी, और टाइम बचेगा। हाँ, हर कार्य समय पर होगा, और निर्भयता, ये सारे दिव्य गुण आ जाएंगे। तो चलो, एक तो ये पहलू है कि इस ज्ञान को हम उनको ऐसे बताएं कि उसमें ये सारी चीजें आ सकती है, और ये सर हम इस आधार से बताएं कि ये सारे लोग उदाहरण है, ये भाई है, इनको कैसा टेंशन में जीवन था, अब कैसा हो गया, व्यसन थे, अब कैसा हो गया, पहले दिन में कितनी बार रोते थे, अभी रोने की फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो गई है, पहले फेस नहीं कर पाते थे वही परिस्थितियों को, अब बड़ी बड़ी परिस्थितियों को फेस कर सकते हैं इस आधार से। तो ये हो गए इस तरह के पॉइंट। दूसरा है कि ये जो ज्ञान है क्या है, किसे कहेंगे ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा क्या है, ज्ञान इज अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात, ज्ञान अर्थात वो तो सारा है ही, ज्ञान अर्थात किसको ज्ञान कहेंगे, ज्ञान की परिभाषा बाबा ने असंख्य शब्दों में दी है, सारी मुरलियों में, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, ढेर सारी अव्यक्त मुरलियों में, और एक एक परिभाषा एक एक उपमा के रूप में दी है, एक एक परिभाषा एक एक उपमा के रूप में। आज सुबह से हम इसको सोचते बैठे, सुबह 8 बजे से लगभग, तो अभी तक ऐसे 108 उपमाएं निकाली है, और जो हर एक सबको सब पता है, जो बाबा ने ज्ञान के लिए दी है, ये ज्ञान क्या है, ऐसी ज्ञान की एक बहुत सुंदर, जिसको कहेंगे ABCD, बाबा का जो ज्ञान है वो क्या है। ए से 6 है, ये जो ज्ञान है अनहद नाद है, अनहद नाद अर्थात जैन फिलोसॉफी में जो भी शिष्य आते हैं गुरु के पास, उनको कहा जाता है तुम एक हाथ की ताली जो है ना उसको सुनो, जाओ तो ध्यान करने लगता है, उसको पता चलता है मैं ये क्या मुझे मूर्ख बना दिया गुरु ने, एक हाथ की ताली कभी सुनाई देती है क्या, तो वापस जाता है, वो कहता है आपने जरा ठीक नहीं बताया, एक हाथ की ताली बोला ना, वो कहते हैं हाँ एक हाथ की ताली बोला, जाओ सुनो और बैठो सारे दिन भर आज एक हाथ की ताली सुनना। वो ध्यान लगा के बैठता है, उसको सुनाई नहीं आता है कुछ, दूसरे दिन फिर जाता है एक हाथ की ताली सुनो, अरे सुनाई नहीं आ रही है, एक हाथ की कैसी ताली होती है, आवाज आया क्या कुछ, तो बोलते सुनाई नहीं आया, कहते प्रैक्टिस करते रहो, करते रहता है प्रैक्टिस, बीच में लगता है ये क्या हो रहा है, दिमाग थोड़ा सा ये हो रहा है, पूरा पागल जैसा हो रहा है, सुनाई तो कुछ आता नहीं और बस भारी हो रहा है दिमाग, और ध्यान लगाते बैठे रहो, और जब भी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कहता जाओ सुनते रहो, सुनोगे एक दिन, धीरे 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 ये जो विचार है, ये जो भटकना है मन का, शांत होते जाता है, शांत होते जाता है, शांत होते जाता है, क्योंकि सारा ध्यान आत्म केंद्रित अंदर हो गया है, जो संसार का चिंतन था धीरे 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 बंद हो गया, और फिर एक दिन अचानक कुछ होता है और भाग के गुरु से कहता है कि हाँ आज सुनाई देगी। ये है क्लैपिंग ऑफ वन हैंड। वो जो अनहद नाद है जो सृष्टि में गूंज रहा है, उसे दो प्रकार के नाद, एक आहत, आहत अर्थात चोट जो फ्रिक्शन से उत्पन्न होता है, ये सारे जो संसार में आवाज है दो से उत्पन्न होते हैं, परंतु अनहद नाद अर्थात ईश्वर की जो आवाज है उसको अनहद नाद कहा जाता है, जिसे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भारत में ओम नाम कहा, ये उससे शायद थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो बाबा का जो ज्ञान है वास्तव में वो क्या है, अनहद नाद है, इस सृष्टि से परे का है वो। तो ये ज्ञान क्या है, अनहद नाद। दूसरा ये ज्ञान आकाशवाणी है। ये ज्ञान क्या है, आकाशवाणी है, जैसे कि आकाश से आवाज आ रही है, आवाज भी कैसी होती है ना बाबा की, आकाशवाणी है ये। वहां पर शास्त्रों में जो दिखाया है, आकाशवाणी जो भी बोलती है वो क्या होता है, सत्य होता है, फिर चाहे कंस जो करना है करे। आकाशवाणी ने कह दिया देवकी का आठवां पुत्र, मतलब देवकी का आठवां पुत्र ही मारेगा। आकाशवाणी कभी भी झूठ नहीं हो सकती। बाबा के जो वाक्य है, बाबा का जो ज्ञान है, बाबा ने क्या कहा, यही सिद्ध करो ना। वो लोग आके क्या कहे कि ये जो हमने सुना और कहीं नहीं सुना, बीके का ज्ञान एक तरफ और सारे संसार का ज्ञान एक तरफ, यही सिद्ध करना है ना। कहां सिद्ध करना है, अगर मधुबन में भी आ जाए कोई, मधुबन भूमि में, केवल इतना कहे कि यहाँ प्यार बहुत अच्छा है, रूहानी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, यहाँ पर धरनी बहुत अच्छी है, वो तो तैयार हो गई ऑलरेडी, तुम्हारे चार स्तंभ है जिसने धरनी तैयार कर रखी है, पवित्रता, स्वच्छता, शांति और स्नेह, पवित्रता धरनी तैयार है, परंतु इस वरदानी भूमि में आकर, इस चैतन्य तारामंडल में आकर भी अगर केवल इतना ही कहे कि यहाँ की शांति बहुत अच्छी है, यहाँ की स्वच्छता बहुत अच्छी है, पर्दे बहुत अच्छे है, बहुत प्यार से बात करते, बस इतना ना नहीं, क्या चाहिए फिर शैलेंद्र भाई, कोई आके बस इतना कहे इनफ है। बाबा ने कहा वरदानी भूमि है, यहाँ आके खाली इतना कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए ज्ञान है तो बस यही है, यही ज्ञान की अथॉरिटी वाले हैं, यही सत्य अथॉरिटी वाले हैं, ये एक तरफ और बाकी सारी दुनिया एक तरफ, इतना कहेंगे तो मानेंगे, नहीं तो खाली आके बैठे। और यहाँ पे भी वो हमने ये वहां पर भी सुना था, हमें याद है एक डॉक्टर आए थे मुंबई से, तो उनको सीधा बाबा से मिला दिया था कई लोग उधर के ही, तो बाबा से मिले वो, और बाबा ने उनको दृष्टि वगैरह दी, टोली वगैरह दी, और फिर आकर पांडवों में बैठे थे और उन्होंने अनुभव सुनाया। सेम ऐसा ही अनुभव हमारे गुरु जी के पास भी होता है, सेम हमारे गुरुजी भी जब ऐसे दृष्टि वगैरह देते और कुछ खाने के लिए प्रसाद देते, सेम अनुभव हुआ उनको। और उन्होंने कहा, उनको कहा था इधर क्लास वगैरह आ सकते, बोले क्लास वगैरह कुछ नहीं, मुझे योग करना है, योग करने चले गए, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, पर योग करते करते परमधाम पहुंच गए। तो ये होना इतना नहीं, केवल यहाँ आके कहे यहाँ ऐसा ही है, वहां पे भी वैसा ही है, वो जो भी देख रहे हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये सब ये प्रत्यक्षता नहीं है। ज्ञान से प्रत्यक्षता होगी ज्ञानदाता की। किसी को सामने बाबा के सामने खाली दृष्टि दे दी और हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। बाबा तो अपनी तरफ से सारा देगा, परंतु उसका बहुत सारी फैक्टर्स है, उसका भाग्य, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ, वो सारी चीजें भी आती है। नहीं तो जितने बाबा के सामने आकर वीआईपी जा रहे सारे बन गए होते, पर थोड़ी ना बने। तो दूसरा नंबर, ये ज्ञान क्या है? आकाशवाणी है, सत्य है, शब्द शब्द सत्य है। एक एक जो कतरा गिर रहा है सागर से वो सत्य है। क्या हमने इसे सत्य माना है? जो शब्द शब्द उसमें आते हैं, एक एक शब्द जो आता है, क्या उसकी यथार्थता और सत्यता को मैंने अनुभव किया है? हम कह रहे हैं कि दुनिया वालों को बताए कि ज्ञान नया है, पर क्या मैं, मुझे ये नया है? मुझे ही पुराना पुराना है संजय भाई, तो फिर दुनिया वालों को हम क्या बताएंगे? आओ इधर, ये सत्य है, ये नया है। बाबा ने दो प्रकार की आत्माएं बताए आने वाली, कौन कौन सी श्याम भाई जी? दो प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं जो बनती है, एक वो जो प्रेम और दूसरी वो जो, तो कौन सी शक्ति बड़ी है, ज्ञान की शक्ति या प्यार की शक्ति? अब सोच के जवाब देना। ज्ञान युक्त प्यार, क्योंकि प्यार भी बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु हाँ प्यार जो है वो हमेशा प्रेमी पर आधारित होता है। सच्चा प्यार होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, परंतु ज्यादा से ज्यादा प्यार अगर दो व्यक्तियों में प्यार है वो दूसरे पर आधारित होता है, उसके प्यार पर। उसने प्यार देना बंद कर दिया तो इधर प्यार कम हो जाता है। हाँ वो जो कुछ योगी थे जिनके हृदय में प्यार निरंतर थे, जैसे महात्मा बुद्ध बैठे हुए, उनको जरूरत नहीं है किसी से अलग से प्यार करने की, वो प्यार की सरिता बह ही रही है निरंतर। अगर कोई आ जाए तो उसको प्यार मिल जाएगा, नहीं आए तो नहीं मिलेगा। वो जहां जाएंगे वहां प्यार देंगे, ऐसा स्वभाव है वो, जो वास्तव में प्रेम है। संसार के जो प्रेम है वो डिपेंडेंट है, आधार है उसमें, तुमने प्यार देना बंद कर दिया तो मैं भी प्यार करना बंद, ऐसे प्यार है, आश्रित आश्रित। तो एक तो प्यार की शक्ति है, दूसरी है ज्ञान की शक्ति, तीसरी है प्यार ज्ञान, दोनों ज्ञान और प्यार दोनों चीजें है उसमें, तीनों बताए। एक है जो परिवार से प्यार बहुत करते है, दूसरे है ज्ञान और मुरली से प्यार करते, ऐसे भी बताए। प्यार वाले हिल सकते हैं, ऐसे बोला प्यार वाले, क्योंकि केवल प्यार 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 से नहीं होता है काम, ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान युक्त तो प्यार चाहिए। परिवार का प्यार, इसका प्यार, उसका प्यार, बहुत अच्छा प्यार है, परंतु वो हिलेंगे। ज्ञान की मस्ती कैसी है? दो शब्द प्रयोग किए सुभाष भाई, ज्ञान की मस्ती कैसी है? अलौकिक है और निराधार है। ज्ञान से जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाया, ज्ञान की मनन शक्ति से शक्तिशाली जिसने बनाया, उसको किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है। खाली ज्ञान नहीं है, मनन नहीं है, खाली प्यार है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि प्यार में बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। कौन कौन सी कुशल भाई? धोखा। प्यार में धोखा हो सकता है एक तो, और सुशील भाई प्यार में क्या होगा? लगाओ, झुकाओ, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, और धोखा हो गया तो कुछ भी कर सकता है। आज सब मिल रहा है, सारों की केयर अटेंशन मिल रहा है, एक दिन कुछ भी नहीं मिले, निगेटिविटी उनके प्रति, जिससे जितना सबसे बड़ा शत्रु कौन बनता है व्यक्ति का? वो नहीं बनता है जो अनजान है, जो अपरिचित है, वो जो सबसे नजदीक होता है और जिसको सबसे अधिक प्यार किया होता है, वही सबसे बड़ा शत्रु जाके बनता है एक दिन। बरबर है निखिलेश भाई, बड़े बड़े शत्रु कौन होते हैं हमारे? जो हमारे दूर वाले वो नहीं होते कभी, जो एकदम नजदीक है। क्या कहा होते? कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। अपने दे तो इसलिए खाली प्यार से काम नहीं चलता है, कम था। तो प्यार खाली प्यार से नहीं काम होता है। प्यार है बहुत अच्छी चीज, बहुत बड़ी शक्ति है, पर खाली प्यार 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 से कुछ नहीं होता है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान का मनन चाहिए, ज्ञान का चिंतन चाहिए, ज्ञान का अध्ययन चाहिए। क्योंकि परिस्थितियों में कैसे अपने आप को स्टेबल रखोगे? परिस्थितियों के लिए ज्ञान बहुत बड़ा शस्त्र है, ज्ञान ही चाहिए वहां पर। ड्रामा किसी संपूर्ण ज्ञान की स्पष्टता जिसमें जितनी अधिक है उतना ही वो स्टेबल है व्यक्ति। तो दूसरा बताया आकाशवाणी, तीसरा ए से है अटपटा खटपटा चटपटा। ये जो ज्ञान है कैसा है? अटपटा है। इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी है कि विरोधाभासी है। क्यों? कुछ कुछ बातें विरोधाभासी है, एक मुरली ना मिले दूसरे मुरली से, कुछ कुछ पॉइंट्स में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर डिबेट जो किए थे बीच में, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मुरली डिपेंड कर रही है सामने कौन बैठा था उस समय, साकार में टाइम प्लेस पर्सन, उन लोगों के आधार पर मुरलियां चलती थी। इसलिए बहुत लहरें है उसकी, तरंगे है, अलग 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 तरंगे है। खटपटा चटपटा, बहुत उसमें चटपटी बातें भी बहुत सारी आती है। बाप स्टेशन मास्टर है, जो गाड़ी 8 बजे आनी है वो 8 बजे आएगी, 2 बजे नहीं आएगी। ऐसे ऐसे उदाहरण मुरलियों में आते हैं। ऊंट पे बैठे है तो ऐसे लगता है जैसे विमान में चल रहे हैं, अभी भी आया था। ऐसे संसार भर के उदाहरण आते हैं। महल ऐसा बनाया है कि घर में ही मंदिर है, महल के अंदर घर मंदिर बनाते हैं कुछ कुछ राजा है। सारे दुनिया भर की न्यूज आती है उसमें, चटपटा भी है। पौधों पर मैल, सुई पर जंक, संसार के जितने उदाहरण हैं, सारे जानवर, भाषाएं, स्टेट्स, राज्य, इतिहास, इतिहास के उदाहरण, ज्योग्राफी, सब कुछ है उसमें। चौथा है ज्ञान एरो है, एरो अर्थात तीर, तीर। जैसे वो तीर चुपता है वैसे ये ज्ञान जो है ये भी तीर की तरह है, चुप जाए यहां से खून निकले तो ही परिवर्तन आएगा, नहीं तो व्यक्ति तो अपनी धुन में मस्ती में चलता रहता है, सोया सोया मूर्छित। ज्ञान का तीर लगना चाहिए उसको, जैसे वो रत्नाकर डाकू को लगा था, जैसे ही नारद ने कहा जाओ पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप में कौन कौन सहयोगी है, सहभागी है, तुम्हारे साथीदार है। जैसे पहुंचा एक एक को पूछा, पत्नी को पूछा, बाप को पूछा, माँ को पूछा, बच्चों को पूछा, सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने कहा कि तुम्हारे पाप हम थोड़ी ना लेंगे अपने ऊपर। वैराग आ गया एकदम, ऐसा तीर लगा कि छोड़ दिया, फिर तपस्या में बैठ गया। मरा 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 करते 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 वाल्मीकि बन गया सीधा। तीर लगना चाहिए, और जैसे हमको लगा दूसरों को भी लगाना है। तुम सब कौन हो? मुरलियों में क्या आता है? श्रीखंडी हो। तुमको तीर लगाना है किसको? भीष्म को, भीष्म पितामह। श्रीखंडी कन्याएं, कन्याओं को कहते हैं ना बाबा। हाँ, पर तुम कन्याओं को तीर लगाना है ये कहते क्योंकि श्रीखंडी कन्या था, अंबा अंबिका अंबालिका, जो भीष्म ने जो कहानी है ना पुरानी, उसी का पहले नदी बनी और नदी के बाद में वो श्रीखंडी। हाँ, कन्याओं को मारना है तीर भीष्म पितामह को, तो अर्थात मारेगी। आर्मर ज्ञान अर्थात कवच, ज्ञान क्या है? कवच है। यदि हमको दर्द हो रहा है, दुख के तीर लग रहे हैं, अर्थात कवच पहना हुआ नहीं है। ज्ञान का कवच ऐसा पहन के रखना है जैसे कर्ण ने पहन के रख, तो निकालना मुश्किल था, निकाला तो पूरा लहूलुहान हो गया, ऐसा उसके बाद ही मृत्यु हुई। जैसे योग का कवच है, ज्ञान का भी कवच है। अगला है एंटीवायरस है। ज्ञान जो है वो माया के अगेंस्ट एंटीवायरस है। ये इंस्टॉल करके रखना है आत्मा में, तो ही माया का वायरस अंदर नहीं घुसेगा। उसको बार बार अपडेट करते रहना पड़ेगा, डेली ऑटो अपडेट। तो ये जो ज्ञान है क्या क्या बताया? अनहद नाद, आकाशवाणी, अटपटा खटपटा चटपटा, तीर, कवच और एंटीवायरस, ये सब ए से है। फिर बी, ज्ञान जो है बटर है, मक्खन। भक्त क्या खाते हैं? छाछ। और तुम? मक्खन। ये ज्ञान बसंत है, योग रूप है, ज्ञान बसंत है। ये ज्ञान नैया है, बोट, बी फॉर बोट। ये ज्ञान बॉम्ब है, ज्ञान और योग भाई बहन है। ये भी बताया था, ये तो हमने सुबह से अब तक इतने निकाले और बहुत सारे निकल सकते हैं, ढेर सारे। और ये खाली वस्तुओं को लिया है, वो तो छोड़ ही दिया है, जैसे ज्ञान की चमक है, शाइन है, ये सारा तो छोड़ ही दिया, ये खाली वस्तु जो है उनको लिया है इसमें। तो ज्ञान बॉम्ब है। बाबा कहते विस्फोट करो। क्या करना है तुमको? विस्फोट करना है। गुरुओं की गद्दी हिलनी चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म युद्ध बाकी है, गुरुओं की गद्दी हिलनी चाहिए। और इस मुरली में दो चीजों को फोकस किया है ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए। कौन सी दो बातें है? वो पूरी मुरली में दो टारगेट किए हैं, उन दोनों से बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। एक तो समाचार पत्र और एक शक्तिशाली लोग, शक्तिशाली आत्माएं, उनके द्वारा ढिंढोरा पिटेगा। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके द्वारा होगा। ये दो मेन टारगेट है, एक तो वो शक्तिशाली लोग, उसमें गुरु आ गए, और दूसरा है अखबार, न्यूज़पेपर, मीडिया, इसके द्वारा ज्ञान सिद्ध होगा। तो बॉम्ब, फिर है बैंडेज। अंतर मन के गहरे जख्म जो है उसको क्या चाहिए? ज्ञान ही बैंडेज लगा सकता है। दूसरा समय है, बेस्ट हीलर टाइम, पर ज्ञान से ही बैंडेज लगाया जा सकता है। ज्ञान से ही उसको समझाया जा सकता है कि ये जो होना था यही होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ, इसी में कल्याण है। कल का वरदान था ना, कि आज का जो हुआ वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, कल्याणकारी, अच्छे से अच्छा। हाँ वही जाल, वो क्यों क्या कैसे का जाल नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ वो अच्छा, श्रेष्ठ और कल्याणकारी, तीनों चीजें हैं। तो बैंडेज है। फिर बाम है, कई कई मुरलियों में आता है ना, ज्ञान क्या है? बाम, बाम लगाने की, कोई भी झिंडू आयोडेक्स। फिर हमने एक नया शब्द आज निकाला है, बाबा पीडिया। जैसे विकीपीडिया होता है, वैसे बाबा पीडिया, ये जो है ना एक्सटेंसिव एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें सबसे बिगेस्ट सर्च इंजिन है, इसमें कुछ भी डालो कुछ भी आ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं तो आना ही है उसको, वो पॉइंट को। खाली आपको धीरज धर के बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अभी आ जाए अभी आ जाए, ऐसे नहीं होगा, आएगा। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, आएगा। परंतु 8 बजे तक रुकना पड़ेगा, गाड़ी 2 बजे नहीं आएगी, 6 घंटा बिफोर टाइम नहीं आती है कोई भी गाड़ी, उस दिन 6 घंटे का टाइम दिया बाबा ने। तो ये बाबा पीडिया या गॉड पीडिया कह दो इसको। फिर है बात, बात अर्थात स्नान, कितनी बार करना है? दो बार, कम से कम दो बार स्नान करना, अर्थात सुनना या पढ़ना, ये स्नान नहीं है। ना तो सुनना ना तो पढ़ना, चिंतन स्नान है, मनन स्नान है, उसी से बुद्धि एकाग्र होगी। ये एकाग्रता की कितनी अच्छी विधि बताई, एकाग्र नहीं हो रहे, क्या करो, टॉपिक लो और मनन करना चालू करो। टॉपिक ले लो कोई भी और उसके ऊपर चिंतन करना चालू कर दो, कोई भी टॉपिक, कहीं का भी टॉपिक। अब ये भी दे दे आपको कल सुबह के लिए, कल सुबह का जो सेशन होगा वो इंस्टेंट मेथड वाला होगा, उसमें 3-3 मिनट ही बोलना है, ठीक है? नहीं आएंगे, 3 ही मिनट बोलना है, कभी भी जब आएंगे तब बोलना है। सुशील भाई, श्याम भाई नोट करते जाओ, सुशील भाई समय की दस्तक, संजय भाई लगाव की जंजीर है, 3 ही मिनट ज्यादा नहीं, सुभाष भाई अलौकिक परिवार की फुलवाड़ी, प्रभाकर भाई मधुबन एक शीश महल, पवित्रा बहन तप की मशाल, कुशल भाई माया की मधुर लोरी, रविंद्र भाई भाग्य मेरी मुट्ठी में, ब्रिजेश भाई जी जाग उठा योगी, कमलेश भाई माया से संग्राम, निखिलेश भाई वक्त की आवाज, महेंद्र भाई ब्राह्मण मन एक मंदिर, शिवानंद भाई बाबा तू बेमिसाल, शैलेंद्र भाई आदत की मजबूरी, 3 या 2 मिनट यही है, कल यही है, नहीं सुबह फर्ज और फर्ज अदाई आपका, ठीक है? और कौन बचा, ये लोग रहेंगे, भाग्या बहन सेवा का मीठा बंधन, और उनके बाजू वाले नेहा बहन खुशनुमा जीवन का रहस्य, इधर सुरेश भाई परमात्मा अफसाना, सुरेश भाई अफसाना, उसके बाद में श्याम भाई रूहानी प्यार का तराना। ये सब अभी फ्रेश निकाले हुए हैं टॉपिक्स, आज ही निकले हैं सारे के सारे, आज ही जन्म लिया इन्होंने, एकदम फ्रेश है, अभी तवे से उठा के अभी लाए हैं, हमने अभी कुछ ही समय हो गया, कुछ घंटे पहले ही जन्म हुआ है सारे टॉपिक्स का। हाँ, इन पर सब सुबह होना चाहिए। वो बहन जी पीछे जो बैठे हैं उनका क्या नाम है, बाबा तेरी कसम ये टॉपिक का नाम है, ठीक है? इसमें 3 ही मिनट बोलना है और रात भर का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो अभी आ जाओ वापस। ज्ञान क्या है सुनने आना पड़ेगा ना, तो ये जो ज्ञान है क्या है, स्नान है, फिर ज्ञान जो है भूभू बजिंग, ज्ञान की भूभू करो, भूम भू रमरी मिसल, तो बी से है बटर, बसंत बोट बॉम बैंडेज बाम बाबा पीडिया बात और बजिंग, टोटल 9 है। फिर है सी फॉर कोलिरियम, कोलिरियम अर्थात काजल अंजन, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ये अंजन लगा के रखना है तो सब कुछ स्पष्ट दिखेगा, धुंधला क्यों दिखता है? बाबा उदाहरण कौन सा देते हैं धुंधला, एक बार घूमने गए थे कोहरा और कुछ भी नहीं दिखाता है, एक बार मुरली में बाबा ने एक जबरदस्त उदाहरण दिया व्यक्त मुरली में, जैसे बाथरूम में स्नान करते हुए तुम्हारा जो आईना होता है वो उसमें फागी ये कुछ दिखाई नहीं देता है, बाबा ने वो उदाहरण दिया एक मुरली में ना तो कोलिरियम अपनी आंखों में ज्ञान का अंजन लगा के रखना है। फिर ज्ञान है चोप चीनी, चोपचिनी अर्थात न्यूट्रिएंट है, कोई एक चीज है आयुर्वेद में। फिर है शंख ध्वनि, कॉन्ग साउंड, शंख ध्वनि है ज्ञान, ज्ञान है रंग, ज्ञान है चिंतामणि, ज्ञान है च्यवनप्राश। एक है चोपचिनी भी बोला है कभी मुरलियों में, च्यवनप्राश बोला है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर होगा, आ जाएगा। फिर डी से है ज्ञान है डेकोरेशन अर्थात सजावट, ज्ञान है डांस, ज्ञान है ड्रेस, ज्ञान ड्रेस। ई से है इसेंस अर्थात सार, ये ज्ञान सारे शास्त्रों का इसमें सार है, क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म इस्लाम जितने धर्म है सारे धर्मों का मेन इसमें है। क्योंकि मुरली में इतनी सारी पॉइंट्स होती है, यदि हम एक मुरली को स्टडी करें, क्योंकि मुरली इज अ कंटिन्यूअस स्पीच, वो पता नहीं चलता है, कंटिन्यूअस स्पीच पता है ना, कंटिन्यूअस स्पीच का एक प्रकार होता है कंटिन्यूअस स्पीच, जैसे कि उस दिन भी बता रहे थे भारत मेरा देश है, देश बहुत है, बहुत हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा मुझे बहुत प्रिय है, हिंदी भाषा मुझे बहुत प्रिय है, हिंदी भाषा में ढेर सारे शब्द है, शब्दों में इतने इतने प्रकार है, प्रकार ये होते हैं, जहां जहां से शब्द छूट रहा है वहां से नया शब्द चालू हो रहा है। मुरली ऐसी होती है कि यहां से मुरली चालू हुई कि तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, देवताओं में दिव्य गुण होते हैं, देवता सतयुग में होते हैं, तुम्हें सतयुग में जाने की तैयारी करना है, सतयुग में ये होता है, वो है श्रेष्ठाचारी दुनिया, ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये नर्क है, ये विषय वैतरणी नदी है, यहाँ पर कोई ऐसे ऐसे नेता ऐसे ऐसे करते हैं, फिर तुम्हें सेवा भी करनी है, फिर तुम्हें नेताओं को भी ज्ञान देना है, फिर सेवा का पॉइंट, कब ज्ञान का पॉइंट खत्म हुआ और कब योग का चालू हुआ, पर तुम्हारा चार्ट भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली सेवा ही करते बैठो, फिर बीच में एकदम योग का चालू हो गया, इस गवर्नमेंट की भी तुम्हें 8 घंटा सर्विस करनी है। अब चालू कहां से किया था वो पता ही नहीं, इसके लिए मुरली याद रखना तरावटी माल, वो भी एक पॉइंट है, ये ज्ञान जो है ना इतना तुरंत याद नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही चीज करनी है कि कौन सी पॉइंट कहां खत्म हो रही है और कहां से नई पॉइंट चालू हो रही है, पार्टीशन कर देना है माइंड में, कहां कहां पॉइंट खत्म होती जा रही है और नई नई पॉइंट चालू हो रही है। इसलिए इसमें सारे शास्त्रों का सार है, सारी पॉइंट उसमें आ जाती है, एक ही मुरली, कभी कभी लगता है एक ही मुरली होनी चाहिए, एक हफ्ता साकार मुरली, बस ओनली वन साकार मुरली एक हफ्ते तक चालू रहे। फिर है एफ, एफ से फ्रेग्रेंस खुशबू, ज्ञान है फल फ्रूट, ज्ञान है भोजन फूड, ज्ञान है फाउंडेशन, आज बोला नींव है फाउंडेशन है नवीनता है, तीन शब्द बोल रहे हैं, ज्ञान है फायर आग, ज्ञान है फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट मलम पट्टी, तुरंत कुछ हो गया वहीं ऑन द स्पॉट फील्ड में ये ज्ञानी काम करेगा, वहां बैठ के कहां योग लगता है, पहले तो फर्स्ट एड किट चाहिए, बाद में। फिर जी, जी से ज्ञान है घास, ग्रास, तुम गैया हो ये ज्ञान घास है, और गाय जो करती है वही करना है तुमको ये खाने के बाद, फिर हाँ अगर नहीं करते माना बीमार। फिर घी, ज्ञान क्या है घृत, घृत है। फिर गिफ्ट है सौगात है, ज्ञान क्या है गीता है, ये ज्ञान ही वास्तविक गीता है। ज्ञान है जीपीएस, गॉड्स, गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल नहीं, गॉड्स, गॉड्स जीपीएस कहो या गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम कहो कुछ भी, गॉड, गन पाउडर, गन पाउडर, गन पाउडर अर्थात बारूद, गन पाउडर अर्थात ये ज्ञान क्या है बारूद है। फिर है एच, एच अर्थात गरम गरम हलवा है, ये ज्ञान गरम गरम हलवा है, ये ज्ञान हेलमेट, ये ज्ञान हेवेंस गेट, ये ज्ञान हरि कथा है। फिर है जे, आई, आई फॉर इंजेक्शन, ये ज्ञान क्या है इंजेक्शन है, ये ज्ञान क्या है जे, जियादान डोनेशन ऑफ लाइफ, ये ज्ञान के काइट और की पतंग है उड़ाओ, या फिर की है। एल, एल फॉर लाइट, एल फॉर लाइफ गिविंग हर्ब अर्थात संजीवनी बूटी, एल फॉर लैम्प अर्थात दिया, एल फॉर ललबाय अर्थात लोरी। एम, एम से बहुत सारी चीजें, माजून, माजून अर्थात वो जेली या लिंटस, जेली जैसा, मतलब जो लगाते हैं या फिर खाते हैं, खाते का, खाने का, माजून खाने की चीजें, शक्तिशाली जैसे न्यूट्रिएंट सब कुछ होता है उसमें। ज्ञान मेडिकेशन है, दवाई है। ज्ञान दर्पण है, मिरर। ज्ञान म्यूजिक है, ज्ञान माइट है, ज्ञान मानसर और ज्ञान मिस्ट्री है, रहस्य है। बाबा ने कहा ये ज्ञान जो है अंत तक सुनाते रहूंगा, इसमें इतने रहस्य, इतने रहस्य, धीरे धीरे रहस्य खुलेंगे, सारे रहस्य एक साथ नहीं बताए जाएंगे, धीरे 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 पर्दे खुलते जाएंगे और कुछ रहस्य अंत तक रहस्य ही रहेंगे। ये इस ड्रामा की सबसे बड़ी शोभा है, वो शायद लास्ट तक भी ना पता चले। ज्ञान मर्क्यूरी है, पारा। ज्ञान मस्क, कस्तूरी है। ज्ञान मेष, गदा है। ये हो गया एम से। एन से नेक्टर है, अमृत। मैजिक, मैजिक भी है बरोबर, मिस्री। ज्ञान नाइटेंगल, बुलबुल है, टिकलू टिकलू करती रहे। ज्ञान ओशन है, सागर है। ज्ञान ऑर्नामेंट, आभूषण है। ज्ञान ओर, पतवार है। ज्ञान पी, पेट्रोल। पायर अर्थात चिता। पजल अर्थात पहेली। फिलोसोफर स्टोन अर्थात पारसमणि। पर्ल, मोनी, मनी। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल एक साथ। ज्ञान क्यू से, एक ही क्यू से अगर कोई बना सकते तो बनाए। क्यू से एक ही हमने बनाया, क्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ गॉड, और कोई मिला नहीं। क्यू से कुछ बना ही नहीं। आर से रेन, बारिश, ज्ञान बरसात। ज्ञान आर से नदी, आर से रीन, रेन, रेन अर्थात लगाम, रिफ्रेशमेंट। एस से स्वॉर्ड, हम इसका विस्तार में नहीं जाएंगे, खाली नाम सुना रहे, थोड़ी सी एक दो बातें और करनी है क्योंकि सोप में आ गया वो। एस फॉर स्वॉर्ड, सीड, सीक्रेट, सन, सिरिंज अर्थात पिचकारी, सैकेरिन, स्टडी अर्थात पढ़ाई, एस अर्थात सत्संग, सोर्स ऑफ इनकम, सोप, शील्ड अर्थात शील्ड, सीजर, सोमरस, शुभिरस, स्टोर, इनएग्जॉस्टिबल अक्षय, क्या कहेंगे उसको, निधि, खजाना। स्वदर्शन चक्र है, ज्ञान टैबलेट है, ज्ञान टॉनिक है, ज्ञान तरावटी माल है, ज्ञान टॉर्च है, मशाल है, ज्ञान ट्रेजर है। ज्ञान उड़न खटोला, फ्लाइंग सॉसर। ज्ञान अन, कलश, ज्ञान कलश। ज्ञान वखर, ज्ञान वासधूप। ज्ञान तरंग, वाईफाई, अम्ब्रेला, यस अम्ब्रेला भी है, कंपास, हाँ कंपास भी डाल सकते हैं, ये एडिशनल चीजें है अभी। देखो और भी बहुत बाकी है, इतनी तो निकली और बढ़ जाएगी। वाईफाई वे, ज्ञान पाथ है, ज्ञान पथ है, नया मार्ग। ज्ञान पंख है, ज्ञान एक्सरे है। वाई से योगीज वेल्थ, योगी का खजाना है। और जेड से झूला। तो ये सारे बाबा ने कितने उदाहरण दिए हैं, ये 108 थे और आपने उसमें 3-4 एडिशन किए, और ये उसमें तो वो तो छोड़ ही दिए, ये तो खाली वस्तुओं को लिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस ज्ञान को समझने के लिए जो पहला प्रश्न था हमारा कि ज्ञान क्या है, इसको समझना है। ज्ञान को बाबा ने किस किस अर्थों से, रीति से समझाया, इतने उदाहरण दिए और इन उदाहरणों में से जो जो वस्तु है, जो जो करती है, वो सारा ज्ञान है, ये ज्ञान की समझ है। फिर अगला प्रश्न है कि इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कैसे करें। तो दो चीजों को पकड़ने के लिए बाबा ने कहा, एक तो वो कौन, न्यूज़पेपर मतलब मीडिया, और दूसरा है ढिंडोरा पीट, जिनके द्वारा ढिंडोरा पीटा जाए वो। तीसरा एक ग्रुप है जो मधुबन आता है, जो कहा ना, खाली ये नहीं कहे कि अच्छा अच्छा है, वरदानी भूमि में आ रहे, तो यहां आने के बाद वो एक थर्ड कैटेगरी है कि जिनके द्वारा ये ज्ञान प्रसिद्ध होगा, उनके साथ क्या करें। ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए एक माध्यम है ज्ञान सुनाना, पर इसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्या क्या है, अनुभव कराना। सबसे बेस्ट जो चीज है, सामने अनुभव कर देना, बस वो अनुभव कभी नहीं भूलेगा, बाकी सब भूल जाएगा यहाँ का, सारे कैंपस सब कुछ भूल जाएगा, पर अनुभव जो एक सेकंड के लिए उसको हुआ एकदम अशरीरी हो जाने का, उस अनुभव को कैसे भूलेगा वो? एक तो अनुभव, दूसरा यहां जो आ रहे हैं वरदानी भूमि में चैतन्य तारामंडल, इसको चैतन्य तारामंडल कहा बाबा ने, चंद्रमा सूर्य और तारे सब यहां आए, जैसे वो उंगली उधर करते वैसे उंगली इधर करेंगे, और इधर क्या करेंगे? जो आत्माएं आ रही है, निस्वार्थ सहयोग, रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार, हॉस्पिटैलिटी, उनको स्वरूप चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की विधि है चलन, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की विधि है हमारा व्यवहार, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की विधि है हमारा संबंध संपर्क, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की विधि हमारे बोल। यहाँ को कोई कोई आए और उसको ऐसा कुछ सुना दो कि वो डिस्टर्ब ही हो जाए, उधर जाके ज्ञान ही छोड़ दे, तो क्या कहेंगे? डिसर्विस कर हो गई ना, अभी तक उधर ज्ञान में चल रहा था, इधर आया, इधर से जाने के बाद छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे? तो बाप प्रत्यक्ष होगा नहीं। ये तीन ग्रुप, और क्या करेंगे बाबा को प्रत्यक्ष, ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए? ज्ञान को समझाने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नवीनता लानी पड़ेगी, हमारे अपने ज्ञान में नवीनता लानी पड़ेगी, हमारी अपनी समझ में। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन सेम नॉलेज, उसमें सबसे बेस्ट जो चीज है और जो सबसे कम हो रही है विश्व भर में वो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। विदेश में ये सबसे ज्यादा है एक्टिविटीज। एक्टिविटी ऐसा अर्थ, अभी कल हमारे ओपीडी में सोफिया स्कूल है यहाँ की, वहां के टीचर आए थे, वो बता रहे थे कितने हमने, नहीं निर्मला स्कूल उनके प्रिंसिपल, कितने स्टूडेंट्स है 700। अभी ऐसे नियम बने हुए हैं कि 8वीं तक सबको पास करना ही है, फेल किसी को नहीं कर सकते। ऑल स्टूडेंट्स आर डिसोबीडियंट, कोई भी स्टूडेंट ओबे नहीं करता है, कोई भी स्टूडेंट मानता नहीं है, इतना स्ट्रेस है स्टूडेंट्स की वजह से, और कोई सुनने को तैयार नहीं है जो सिखाते हैं वो, इतना जबरदस्त। यहां क्या विश्व भर में, हमने उनको एक ही कहा कि आप जिस तरह से टीच पढ़ाते हो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। डोंट बी प्रीची, प्रीची अर्थात सिखाने वाले, मैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे कोई सीखना नहीं चाहता है, उनको इन्वॉल्व करो उसमें, सब लोग उसमें आ जाए। जैसे हमने सिक्स थिंकिंग हेड्स किया उस दिन, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाए, स्क्रीन कोई प्ले करो, कोई ड्रामा करो, मतलब पढ़ाने की वही विधि को चेंज करनी है। केवल वही नहीं, आए जैसे टीचर बैठा हुआ है और एक घंटा बस स्पीच हो गया और स्टूडेंट को क्या समझ में आया पता ही नहीं किसी को, कोई बस ऐसे ऐसे आंख खोल के सोते रहते हैं, बड़ी बड़ी आंख करके सोते हैं, ऐसे बैठे तो है पर सोए आंख खोलकर। और एक्टिविटीज प्लस इट शुड बी क्रिएटिव, उसको में क्रिएटिविटी लानी है। अभी मुरली पढ़ने में पढ़ाने में दोनों में क्रिएटिविटी चाहिए। स्टूडेंट्स आए, हम सुनाए, वो चले जाए, इससे नहीं होगा, उसमें भी क्रिएटिविटी की, जिसमें हर एक स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाए उस मुरली में, तो ये ज्ञान में नवीनता होगी। और क्या करेंगे इस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए क्या करेंगे संजय भाई? हाँ, एक और चीज है, साइंस के साथ उसको मिलाना, कोरिलेट करना। फास्टर बीच में आया था ना, गॉड्स पार्टिकल। तो साइंस जो जिस बैकग्राउंड का व्यक्ति है उसको उसी बैकग्राउंड में जाके उसको समझाना। रिलीजियस वाला आया तो हाँ वहां से चर्चा चालू कर सकते हैं ब्रह्मचर्य की, पर कोई स्टूडेंट आया और वो कहता है मुझे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना वो बताओ, या कहता है मुझे लीडरशिप ट्रेनिंग कराओ, हम उसको धर्म कितने थे वो नहीं सिखा सकते। जो जैसा आया है उसको वही देना, पात्र देखकर उसकी थाली में वही परोसना है जो उसको चाहिए। और इस ज्ञान को सिद्ध कैसे करेंगे? रोचक तरीके से, हाँ उनको भारी ना लगे और उनको यहाँ पे कुछ दूसरा दिखाई दे, वही वही नहीं दिखाई दे जो संसार में भी दिखाई देता है, मतलब व्यवहार मतलब सच्चाई दिखाई दे अंदर बाहर, मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं वही ये करते हैं, नहीं तो दुनिया में तो सिखाने वाले, धर्म सिखाने वाले, अध्यात्म सिखाने वाले, मॉरालिटी नैतिकता सिखाने वालों की कमी नहीं है, पर इसमें नजर आए कि हाँ ये लोग वास्तव में है अल्लाह लोक, बाबा कहते हैं अथॉरिटी यूज करना है, प्रेम तो करो पर जब ज्ञान सुनाने की बात है तब पावर चाहिए, ऐसे कि बस यही सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, कोई भी लीडर की प्राइम मिनिस्टर के सामने आके बैठ जाए, कोई भी आ जाए कितना भी बड़ा, ऐसे कि हम क्योंकि यहाँ हमारी हम अथॉरिटी है बाबा ने कहा, इससे बड़ी कोई अथॉरिटी है ही नहीं, यू आर द हाइएस्ट, और ये ज्ञान की है, ज्ञान दाता ने दी हुई है। तो बोलने में भी क्या निर्भीकता, बोलने में भी अथॉरिटी, बोलने में भी सच्चाई, व्यवहार में भी वैसा, ये सारी चीजें तो ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। तो ये एक प्रश्न था, ज्ञान में नवीनता, स्वयं में नवीनता लानी है, नवीन ढंग से ज्ञान को समझाना है और वो हमारे जीवन में आचरण में दिखाई दे, पारदर्शिता हो जीवन में, तब कहीं जाकर इस ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। और क्या बोला मुरली में बाबा ने, और क्या क्या बोला, ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं, आवाज सुनाई देती है ब्रह्मा बाप की, पूछा ना ये आवाज क्या कहते हैं, आओ समान संपन्न संपूर्ण किरणें फैलाओ, विशेष तिकिलदे मुरब्बी तख्त नशीन, अनगनिक सम्मान दिए है। और एक बहुत अच्छी एक विशेषता सुनाई ब्रह्मा बाबा के जीवन की, कौन सी, अब और कब, प्रे अब और कब, अब करना है कब नहीं, वो जो उदाहरण दिया है कि ट्रेन छूटने में के लिए 10 मिनट बाकी है छोड़ दो, उसका अर्थ शायद ऐसा ही है कि छोड़ दो अभी तो छूट जाएगी, नहीं जाओ बैठोगे तब चालू होगी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात टालमटोल करना, हर चीज को डिले करना, उसमें कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ गुड ऑप्टिमिज्म, वो जैसे है सकारात्मकता है, वो आप ये जता रहे हो कि कल में मेरा बहुत विश्वास है, योर फेथ इन टुमारो, इस रीति से वो ऑप्टिमिज्म है। आज का छोड़ो पर मैं कल के प्रति आशावादी हूँ, एक रीति से कहा जाता है ये टाल मटोल करना आशावादिता है, इट्स एन ऑप्टिमिज्म, ऐसे जोक कहते हैं उसको, परंतु लंबा समय कल 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 कर करते जाओ वो आता नहीं है। ये फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अगर हमको कहा जाए कि आप सारे एक ही दिन में कर लो, बाकी सब आराम से बैठेंगे, हमको अकेले को करना पड़ेगा, और कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी जो उसी दिन है, जैसे वो एक बच्चा है छोटा सा बच्चा हमेशा ही फर्स्ट आता है, एक बार फिर फर्स्ट आया तो उसके टीचर ने कहा कि कल वो है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो आप आ जाओ, तो वो जाता है, वो सोचता है क्या जाना है बार 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 बार, वो जाता ही नहीं है, दूसरे दिन ले लूंगा अपनी स्कूल है, दूसरे दिन जाता है तो देखता है वो तो सर्कस का टिकट था और सर्कस तो पहले दिन ही थी, वो गया डिले। तो हाँ तो ये बात जो है ये है स्वपरिवर्तन के लिए, स्वपुरुषार्थ के लिए, अमृत वेले के लिए, मुरली चिंतन के लिए, मुरली मनन के लिए, मुरली अध्ययन के लिए, मुरली चर्चा के लिए, ये सबसे यहाँ पर बात है, अब करना है, अभी रोज स्वयं को एक टॉपिक दो और उसके ऊपर सोचते रहो, जैसे अभी आपको एक एक टॉपिक मिल गया ना तो अभी रात भर इसके ऊपर सोचना। जितना रात भर सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते, ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो इसमें माइंड एकाग्र हो जाता है, नहीं तो माइंड बिखरा हुआ रहता है सब जगह पर, अलग अलग चीजों में इधर सोचता है इधर सोचता है, और जैसे उसको एक दिशा दी जाती है ना ये, तो अब इसमें एकाग्र हो जाता है वो, अब कैसे भी करके उसको सोचना है सोचना है सोचना है इसके ऊपर, और वो अपने विचारों को नए विचारों को निर्माण करता है, वो नए विचार और एकाग्र होते हैं और उसकी आंतरिक विकास होता है और वो ग्रोथ होती है, थिंकिंग की ग्रोथ। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा होगा आर्ट ऑफ थिंकिंग, आज जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग चालू किया ना, आर्ट होने के बाद में आर्ट ऑफ थिंकिंग, थिंक कैसे करना, सबसे डिफिकल्ट काम तो वही है दुनिया में, सोचना कैसे, सबसे ज्यादा कमी उसी की है। तो ये और क्या बोला, एक तो ये वाला पॉइंट था, डिले नहीं करना, फिर बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिसफुल। बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग मिलेगी और फिर जीवन कैसी होगी, ब्लिसफुल होगी। ये भी एक पॉइंट बोली है। हाँ वो बोल दिया, और क्या बीज, फिर उसके बाद में यहाँ बीज वाली बात आई है कि जब बीज, जब डाल डालिया है और वो सारे पत्तियां गिर गए, सूख गए, तब बीज प्रत्यक्ष होता है। ये कोई स्थूल झाड़ की बात नहीं है, ये जो बात बाबा कह रहे हैं ये हमारा जो कल्प वृक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने मुझे पूछा ये क्या, कैसा उदाहरण दे दिया, ये नहीं नहीं वो ठीक है, बीज नीचे से ऊपर नहीं आता है ना ऐसा कभी नहीं। बाबा जिस रीति से इसको कह रहे हैं, ये देखो जब बीज है तो झाड़ नहीं होता है, पहली बात, वो फल के अंदर आ रहा है वो दूसरी बात है। एक है बीज जहाँ है और फिर झाड़ है, जब बीज समाप्त तो हो जाता तब झाड़ बन जाता है, जब झाड़ है तब बीज नहीं है, वो दूसरी बात है। फल है और उसमें फिर बीज आ रहा है वो... एक नहीं, उसमें स्टाल डालिए सूखने की, यहाँ जो बात कह रही है ये सीधा बात बाबा इस कल्प वृक्ष की कर रहे हैं कि यहाँ टाल डालिया है और ये जो झाड़ ये सारे सूख गए, इसके लिए बीज ऊपर आता है अर्थात उसका अवतरण होता है इस धरती पर। आप सीधा, चलो कोई तो झाड़ होगा ऐसा, पर मुझे जैसा लगता है ये सीधा उसका उदाहरण दिया हुआ है राधा धन की, वो ट्री जो स्थूल है, ऐसा टाल डालिया सूख जाती है और फिर बीज ऊपर आता है, ऐसा भी है। उसमें कुछ बाबा ने ऐसा मेंशन नहीं किया गुलमोहर या कोई होगा ऐसा भी, पर हमको तो लगता है ये सीधा डायरेक्ट उसी का उदाहरण है। हाँ तो ये भी इसमें भी कहा, वही कहा कि प्रत्यक्ष करो, ज्ञान दाता को प्रत्यक्ष करो, ज्ञान से ज्ञान दाता प्रत्यक्ष होगा। और मुरली की कोई पॉइंट, एक दूसरा अच्छा टॉपिक है इस मुरली से, वो है चैतन्य तारामंडल, धरती का चैतन्य तारामंडल। यदि ये टॉपिक दिया गया तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, धरती का चैतन्य तारामंडल। ये बाबा मिलन का सीन है, डायमंड हॉल, डायमंड हॉल है धरती का चैतन्य तारामंडल। कैसे, ज्ञान सूर्य है, चंद्रमा है और सितारे है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हाँ इसमें भी बहुत सारी गैलेक्सीज है इसमें भी गैलेक्सीज है बहुत सारी, ढेर सारी गैलेक्सीज। तो ये एक बात, और दूसरी और एक बात यहाँ पर कही है, जैसे वो अथॉरिटी वाले संसार वाले, एक अथॉरिटी होती है पवित्रता होती है, त्याग भी थोड़ा सा कर लेते हैं, पवित्रता भी होती है, उस अथॉरिटी से वो क्या क्या कर देते हैं, सारी आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, क्रांति ला लेते हैं संसार में, जोत को सच सिद्ध कर देते हैं और करते आ रहे हैं, अपनी अल्पकाल की प्राप्ति की झलक दिखाते हैं, तो तुम नहीं कर सकते। वो एक संसार में जितनी सारी आत्माएं अब तक आई है द्वापर से अब तक, बड़ी बड़ी क्रांतियां की है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, जब एक अवतार आता है तो इतनी बड़ी क्रांति आ जाती है, जब इतने अवतार धरती पर उतरेंगे तो कैसी क्रांति आएगी, क्या हो जाना चाहिए, क्या परिवर्तन आ जाना चाहिए, क्रांति की सैलाब आ जाएगा क्रांतियों का, ऐसी क्रांति हो जाए। तो मुरली से धारण करने वाली जो बातें हैं वो है, ज्ञान हमें खुद नवीनता पहले लानी है, ज्ञान हमारे अंदर, हम कोई ज्ञान बोर ना हो जाए, हम कोई मुरली बोर ना हो जाए, हमें कुछ नई मेथड ढूंढनी पड़ेगी रोज की मुरली की सेल्फ स्टडी के लिए। वही वही मेथड, वही वही नहीं चलेगा, लंबा समय से वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही मेथड लिखने की भी वही स्टाइल और वही सब कुछ सुनने की भी वही स्टाइल वो नहीं, ये जो है ना ऑर्थोडॉक्स हो गया है, इसको ब्रेक करके अब कुछ इसमें नया लाना पड़ेगा, तो ही उसमें नवीनता आएगी, नहीं तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सुना नहीं है? सारी पॉइंट सुनी है सबने, क्या नहीं किया है वो है चिंतन नहीं किया है। बस सुन को तो रखा है पर चिंतन नहीं किया है उसके ऊपर। सुना तो सब है, चैतन्य तारामंडल कितनी बार आया होगा, तुम ज्ञान सितारे, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान बहुत सारा है, हजारों बार आया है। पर अभी सबसे पहली स्टेप है अपने अंदर ज्ञान में नवीनता, दूसरा है सिद्ध करने में ज्ञान में नवीनता, सिद्ध करने में नवीनता, नए तरीके से, नए ढंग से, तरकीब से, युक्ति से, जितनी मॉडर्न हमारे पास अभी टेक्निक्स है उन सबको यूज करके ज्ञान को सिद्ध करो। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेके तो सब कुछ, टॉपिक्स भी अलग अलग हो, एक ही एक टॉपिक में बाप समान कैसे बने, चालू ही वो एक ही टॉपिक चालू है, उसमें भी नवीनता, टॉपिक्स में भी नवीनता, स्टाइल में भी नवीनता, मुरली में भी नवीनता, समझने में भी नवीनता, अंडरस्टैंडिंग में नवीनता, चर्चा करने में भी नवीनता, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हर एक अपनी अपनी जगह पर जाकर करे वो है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज उसको कन्वर्ट कर दे एक्टिविटी में, नए नए सीनेरियो, जैसे मुरली में आता है कोई भी एक सीन आता है उसका ही प्ले करो, तुरंत मुरली पूरी हो जाए आधे घंटे में या 40 मिनट्स में, और नेक्स्ट 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो हो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सारे स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाए ताकि वो थोड़ा अलर्ट बैठे। संख्या कम होगी तो चलेगी पर क्वालिटी चाहिए। खाली हमारे सेंटर पर 1000 के स्टूडेंट है ये सबसे कुछ नहीं होता है, क्वांटिटी क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी। हाँ बाबा बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कराते, नाम उसको शायद स्पिरिचुअल एक्टिविटी तब नहीं देते होंगे पर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ही थी, और वो चाहिए हर दिन मुरली से ही निकालना है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो भी सिनेरियो आते हैं उसमें। जैसे मुरली में आते एक बार बच्चे गए थे और रास्ता भटक गए थे, चलो अभी यहाँ एक सिनेरियो क्रिएट करो कि आप लोग यहाँ से गए थे कौन सा गांव, शेरगांव, हाँ वहां गए और भटक गए, जहां पर भी वहां गए और भटक गए, अब वापस कैसे, अब क्या करेंगे, तो लगाओ पूरे 6 हैट्स, 6 टोपिया, पॉजिटिविटीज, डिफिकल्टीज क्या है, समस्या क्या है, उसमें क्रिएटिविटी लानी है, तो ये एक चीज। फिर उसके बाद में ज्ञान क्या क्या है, ये अभी यहाँ पर जो चिंतन किया कि ज्ञान ये भी है, ज्ञान वो भी है, ज्ञान ऐसा भी है, ज्ञान वैसा भी है, एक ही ज्ञान को बाबा ने संसार की कितनी स्थूल वस्तुओं के साथ जोड़ा, ज्ञान ये है, ज्ञान वो है, ज्ञान ये है, ज्ञान वो है। और क्योंकि क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि चिंतन में कंपैरिजन जरूरी होता है, उसके सिवा चिंतन नहीं होता है। आपको अगर कहा जाए कि ये ऐसा है, मुरली हो गई, सतयुग ऐसा था, खाली सतयुग 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 सतयुग, बाबा ने जो सतयुग पर मुरली चलाई है वो भी कंपेयर की है कलयुग के साथ, तो ही कॉन्ट्रास्ट से ही व्यक्ति समझता है चीजों को, नहीं तो खाली बताया सतयुग ऐसा था, सतयुग में ये था, सतयुग में ऐसा था, सतयुग में वो था, सतयुग में पूरा मुरली पूरी हो गई, इसमें इतना मजा नहीं आता, थोड़ा सा इधर की बातें चाहिए, इधर तुमको, हाँ इधर तुमको ये उठाते हैं, वहां तुमको वो उठाते हैं, यहाँ ऐसा है वहां वो है, वो पूरी मुरली कॉन्ट्रास्ट है। तो उसी तरह चिंतन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। जैसे ही मुरली में आया ज्ञान जो है चौपचीनी है, चौपचीनी क्या है उसको ढूंढो, क्या होता है, आयुर्वेदिक न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है तो कोई भी ऐसा शब्द आता है वखर, ये जो भी आता है उसको बाबा ने जोड़ा है संसार की वस्तुओं के साथ, तो उसको ढूंढना, तो ज्ञान को रमणीक बनाना, ज्ञान में नवीनता लाना, इस फाउंडेशन को मजबूत करना, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है चिंतन, मनन शक्ति को बढ़ाओ। खाली प्यार प्यार, बाबा से प्यार बहुत है करने से नहीं होगा, हमारा तो बहुत प्यार है बाबा से, बाबा ही हमको चला रहा है, ये बच्चे भी बाबा के ही है श्री बाबा के ही बच्चे है पहले कुमार थे, अभी बाबा के ही बच्चे, इनके लिए ही हम गए थे, नहीं तो ये आते कैसे इनके कल्याण अर्थ बाबा ने हमको भेजा था, और ऐसे अनुभव बाबा के, ये सब लोग मैक्सिमम यही सुनाते तो मंथन से एकाग्रता, एकाग्रता से निर्णय और परखने की शक्ति। तो इन शॉर्ट ये सारी बातें मुरली में थी और जो आपको काम दिया गया है उसके साथ में सुभाष भाई और संजय भाई आप भी पहुंच जाना दोनों, ठीक है ना। ओम शांति। अच्छा याद प्यार तो मुरली में है ही नहीं ना, तो दे दे घुमा फिरा के ऐसे मुरब्बी बच्चों को ऐसे सिकिलते बच्चों को ऐसे विशेष आत्माओं को ऐसे तख्त नशीन ताजधारी आत्माओं को तख्त नशीन आत्माओं को ऐसे चैतन्य तारामंडल के चैतन्य सितारों को ऐसे बेहद के जिम्मेवार आत्माओं को ऐसे बेहद के स्मृति स्वरूप आत्माओं को ऐसे मनन शक्ति वाली आत्माओं को एकाग्रता वाली आत्माओं को परखने और निर्णय करने वाली शक्तियों की ज्ञान को सिद्ध करने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञान की आवाज बुलंद करने वाली आत्माओं को गुरु की गद्दियों को हिलाने वाली आत्माओं को डिंडोरा पिटवाने वाली आत्माओं को ज्ञान दाता को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को न्यूज़पेपर के द्वारा अखबार के द्वारा धूम मचाने वाली आत्माओं को ऐसे वरदानी भूमि में जो दूसरी आत्माएं आनी है उनको केवल प्यार प्यार नहीं परंतु ज्ञान से बाप का बनाने वाली आत्माओं को और मनन करने वाली आत्माओं को और कौन सी आत्माएं कब नहीं अब करने वाली आत्माओं को बैलेंस ब्लेसिंग और ब्लिसफुल रहने वाली आत्माओं को स्वच्छता पवित्रता प्यूरिटी स्वच्छता स्नेह और प्यार शांति वाली चार स्तंभों के आधार से आत्माओं को टिकाने वाली आकर्षित बुद्धि को टिकाने वाली आत्माओं को आकर्षित करने वाली आत्माओं को बाप दादा का ऐसी ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी वाली फर्स्ट अथॉरिटी वाली न्यू नॉलेज वाली ओरिजिनल नॉलेज वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।